जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयानी पूजनी सतत केवल ज्ञान पाने पूजो सतत केवल ज्ञान बोले भगवान महावीर स्वामी की आचार्य कुंदु कुंदु स्वामी की आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की हम सभी लोग भक्ति के माध्यम से भी अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं इस बात पर विचार कर रहे हैं। दादीराज महाराज ने भक्ति का जो स्वरूप और भक्ति की जैसी महिमा बताई है वो हमें प्रेरणा देती है कि हम भी ऐसी ही भक्ति करें जिससे कि हमारा जीवन ऊंचा उठ सके अच्छा बन सके। भक्ति में भगवान के गुणों का स्मरण उनके गुणों का चिंतन उनके जैसे गुणों के प्राप्त करने की भावना और उनके जैसे गुणों के प्राप्त करने का प्रयत्न ये सारी चीजें समाहित हैं वही भक्ति का वास्तविक स्वरूप है जिसमें कि हम निरंतर भगवान के गुणों का स्मरण करते हैं उनका ही विचार करते रहते हैं भावना लाते हैं और प्रयत्न भी करते हैं कि मुझे वैसे ही गुणों की प्राप्ति अनंत भगवान के गुणों का विचार सिद्ध भगवान के गुणों का विचार आचार्य उपाध्याय परमेश्वर के गुणों का विचार ये पांचों परमेश्वर हमारे जीवन को प्रेरणा देते हैं और इनकी भक्ति भी हमें श्रद्धा और हमारे भीतर एक समर्पण पैदा करती है। इस श्रद्धा और समर्पण हम कई बार वही समझ चुके हैं पर किसके प्रति है कर्तव्य किसी व्यक्ति विशेष के प्रति या कि उसके व्यक्तित्व के प्रति इस पर भी हमें विचार करना है। गुणों के प्रति अनुराग लिखा हुआ है कि वे गुणगानी के प्रति भी राग तो है पर किसी व्यक्ति विशेष की भक्ति हमारे यहां पर ना कहकर के व्यक्तित्व की भक्ति क्यों कही ये भी हमें विचार करना है क्योंकि व्यक्ति विशेष तो राग द्वेष गुण अवगुण सबसे युक्त है लेकिन यदि हम उसके व्यक्तित्व की तरफ देखते हैं तो वहां से सिर्फ गुणों का ही दर्शन होता है और इसी वजह से हमारे यहां पर व्यक्ति पूजा न करके और व्यक्तित्व की पूजा करने का प्रचलन है यदि उसे ही ठीक माना गया है। क्या होता है कि जब हम किसी व्यक्ति विशेष की पूजा करते हैं तब उसके साथ जिस तरह का हमारा भाव है वो स्वार्थपूर्ण हो जाता है और व्यक्तित्व की पूजा करते हैं तो उसमें सिर्फ गुणों की प्राप्ति का ही भाव है वहां और कोई अपेक्षा नहीं है। ये डिफरेंस हमें बहुत गौर से समझ लेना चाहिए। हम सब लोग के अंदर श्रद्धा तो है लेकिन हमारी अपनी श्रद्धा कभी कभी सांसारिक भी हो जाती कभी कभी स्वार्थपूर्ण भी हो जाती और फिर उस श्रद्धा के साथ जो हम भक्ति करते हैं वो भक्ति पूरे रिजल्ट नहीं दे पाती। यदि सीमित उद्देश्य से भक्ति की गई हो, किसी व्यक्ति विशेष की गई हो, किसी आकांक्षा से वशीभूत होकर की गई हो, तो उसके उतने ब्रॉड इफेक्ट नहीं होते जितने कि हो सकते हैं, होना चाहिए, क्योंकि हम सीमित हो गए, हम एक निश्चित दायरे में बंद गए। इसके लिए एक बहुत बढ़िया उदाहरण मैं पढ़ रहा था, हालांकि ऐसा बहुत कम होता है, पर उदाहरण देकर के, दृष्टांत देकर के समझाया जा रहा है कि हमारी व्यक्ति विशेष की जो पूजा है, हमने व्यक्ति विशेष की पूजा को क्यों महत्व नहीं दिया। हमने अपने नमोकार मंत्र में ये नहीं लिखा कि ऋषभ देवाय नमः, महावीराय नमः, हमने तो अरहंतों को नमस्कार लिखा, हमने तो सिद्धों को नमस्कार लिखा। अगर भगवान महावीर स्वामी अरहंत पने को प्राप्त हो गए हैं तो मेरा नमस्कार उन तक भी पहुंचेगा, जो सिद्ध पने को प्राप्त हो गए हैं तो मेरा नमस्कार उन तक भी पहुंचेगा। वो किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, अगर वैसा व्यक्तित्व किसी के भीतर है तो उस तक भी मेरा नमस्कार पहुंचेगा। ये बहुत ब्रॉड एटीट्यूड, ये बहुत विशाल सोच का दृष्टिकोण। इस तरह के दृष्टिकोण से की गई भक्ति ही हमारे जीवन को ऊंचा उठाती है। क्या हुआ, एक व्यक्ति ने अपनी एक कास्ट की प्रतिमा बनवाई, बहुत सुंदर सी प्रतिमा बनवाई भगवान की, और वो अपने साथ में उसे हमेशा रखता था, उसी की पूजा पाठ करता था। कभी कोई मंदिर भी मिल जाता था तो उस मंदिर में भी अलग से अपनी मूर्ति को स्थापित करता और फिर उन्हीं का जो कुछ भी प्रक्षाल करना है और जो कुछ भी आरती पूजा करनी है उन्हीं की करता, बाकी भगवान से, बाकी से कोई लेना देना है। ऐसा हो जाता है कई बार। ये सम्यक दर्शन का चलमल अगाड़ दोष कहलाता है, जिसमें कि शांतिनाथ शांति का करता, पारसनाथ विघ्नों के हरता, जबकि 24 तीर्थंकर बराबर है, लेकिन आ जाता है मन में भाव, हल्ला होने लगता है तो जोर से शांतिनाथ भगवान की जय बोलते, जैसे कि वो वहां से आएंगे और सबका मुंह बंद कर देंगे, ऐसा लगता है, इसलिए तो शांतिनाथ भगवान की जय बोलते। कोई विपत्ति आती तो पार्श्वनाथ भगवान की रविवार की पूजा कर लो तो शायद विपत्ति दूर हो जाएगी। ये छोटे छोटे से उद्देश्यों को लेकर के जो हमारी भक्ति होती है वो उतने ही उद्देश्य की पूर्ति करके रह जाती है। वो होना चाहिए था उससे और ज्यादा काम, कर्मों की निर्जरा होनी चाहिए थी, लेकिन थोड़ा सा पुण्य अर्जित होकर के और हमारे काम सरल जाते हैं, हम सोचते हैं हो गया हमारा भक्ति का काम फिनिश हो गया, उससे हमें फल भी मिल गया। ये तो ठीक है, इसमें तो कहीं कोई वो नहीं है कि हम इस पे संदेह करें। जब इतना हमारा काम हो जाता है, किसी सीमित उद्देश्य से की गई भक्ति से काम हो जाता, तो फिर क्यों नहीं हम अपना उद्देश्य बहुत बड़ा रखें और क्यों नहीं हम किसी व्यक्ति विशेष की भक्ति करके उसके व्यक्तित्व की पूजा करें, ये हमें उससे संदेश मिलता है। तो वो अपनी मूर्ति की पूजा करता था, और एक बार ऐसा हुआ कि बहुत बड़े मंदिर में वो पहुंचा और वहां उसने अपनी मूर्ति की पूजा शुरू की, तो उसके मन में जो है, जब उसने धूप वगैरह जलाई तो उसके मन में आया कि अरे वाह, ये धूप तो सब भगवानों के पास पहुंचेगी, मेरे अपने भगवान के सामने मैंने धूप जलाई और उसका आनंद मेरे भगवान को लेना चाहिए जो मेरी मूर्ति है, और वो दूसरे भगवान तक वो हवा में जाकर के वहां भी पहुंच रही वो सुगंध, नहीं ये तो ठीक है। हाँ, उसके मन में आ गया ऐसा, तब उसने क्या किया, कहानी बिल्कुल झूठी है मानना, लेकिन कहानी का मजा देखना। उसने क्या किया, वो बाजार जाकर के ना एक चुंगी खरीद के लाया, की बोलते ना उसको क्या बोलते हैं आप, जिसमें कि तेल वगैरह भरते हैं तो उसमें से ऐसे चौड़ा रहता और है ना, हाँ जो भी कुप्पी बोलते हैं उसको, हाँ तो वो लेके आया और फिर उसने जो है अपने जलाई उसने धूप और उसके ऊपर रख दी वो कुप्पी, उल्टी करके उसकी जो नली थी उसमें से निकली वो धूप की सुगंध और उसने उसका मुंह जो है अपने भगवान की नाक की तरफ कर दिया कि हमारे भगवान ही अकेले उस गंध को लेंगे। बिल्कुल झूठी कहानी है हालांकि, लेकिन कैसा लगता, जब मैंने पढ़ा अब हुआ क्या उससे, अब वो अपनी पूजा में मशगूल हो गया और धूप खेई जा रही है उसमें से धुआं निकल रहा है, और बिल्कुल मूर्ति काय की थी, कटुए की मूर्ति थी, कास्ट की प्रतिमा बनाई थी उसने, और उसमें जो है ज्यादा देर तक वो धुआं लगते लगते और काली पड़ गई मूर्ति पूरी की पूरी। तब उसको एहसास हुआ कि ये मैंने क्या किया,
मैंने सिर्फ अपना ही मन मलिन नहीं किया, मैंने तो पूरी भगवान की भक्ति को ही मलिन कर दिया अगर इस तरह से मैं स्वार्थ पूर्ण होकर के भक्ति करता हूं तब। ये एक उदाहरण है, ये बाहर में भी दिखाई देने लगता है और अंतरंग के परिणामों को भी मलिन करने वाला है। हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति स्वार्थ पूर्ण ना हो, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। बादीराज महाराज ने जरा भी स्वार्थ अपना व्यक्त नहीं किया भगवान की भक्ति करते समय कि मुझे कुष्ठ रोग हो गया है और आप उसको ठीक कर दीजिएगा, मैं इस कुष्ठ रोग को दूर करने के उद्देश्य से भक्ति कर रहा हूं, ऐसा कहीं भी उन्होंने प्रकट नहीं होने दिया और उनके मन में ऐसा कोई भाव भी नहीं था। प्राणी मात्र के कल्याण की भावना से की गई भक्ति भी हमारा कल्याण करती है और हम सिर्फ अपने कल्याण की भावना से करते हैं तब वो भक्ति बहुत सीमित होने की वजह से जितना फल देना चाहिए उतना फल नहीं दे पाती है। ये जो निदान इत्यादि करते हैं वो क्या चीज है, बहुत तपस्या करने के बाद थोड़ा सा मांग लेते हैं, उस बहुत बड़े अनुष्ठान से बहुत सारा मिलना था पर मांगने से वो सीमित होकर रह जाता। ये छोटे बच्चों जैसा खेल है कि 100 रुपये और 500 रुपये का भी नोट और पकड़ा देते हैं, जैसे किसी दुकानदार को वो पूछता है कि क्या क्या चाहिए, कहते बस चॉकलेट दे दो और उतने सारे पैसे की सिर्फ थोड़ी सी चीज लेकर के वापस लौट जाते हैं। ठीक ऐसे ही हमें इस बात का भी विचार भक्ति करते समय करना चाहिए कि अगर मैं इस भक्ति से कुछ आकांक्षा रखूंगा तो मेरी भक्ति सीमित होकर रह जाएगी और मेरा भी लाभ नहीं होगा, कर्मों की निर्जरा तो होगी नहीं, थोड़ा सा पुण्य अर्जित हो जाएगा। मुझे भक्ति वैसी करनी है जैसी बादीराज महाराज ने की, कि हर समय वो यही कहते रहे कि मैंने तो आपके ऐसे गुण सुने हैं और अब अगर ऐसा सब कुछ मेरे जीवन में हो जावे तो इसमें क्या संदेह है, मुझे कहीं कोई संदेह नहीं है, वो तो होगा ही होगा। आपकी भक्ति करने से जो मेरे भीतर कर्मों की निर्जरा होगी उससे मेरी व्याधि आपको आप दूर हो जाएगी, ना आपको व्याधि दूर करने की आवश्यकता है ना मुझे अपनी व्याधि दूर हो जाए इस बात की याचना करने की आवश्यकता है। मैं अगर याचना भी करूं और पुरुषार्थ ना करूं तो अकेले कामना करने से, याचना करने से बिना पुरुषार्थ के किसी को आज तक कुछ भी नहीं मिला। भगवान मैं आपके चरणों में आकर के अपनी व्याधि और अपनी विपत्तियों को दूर करने की कोई भी याचना नहीं कर रहा हूं, कोई भी प्रार्थना और कामना नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ जो जन्म मरण का रोग मुझे लगा हुआ है, जो मुझे यहां संसार में भटकने का दुख भोगना पड़ता है, मैं तो उस दुख से बचने के लिए आपकी भक्ति कर रहा हूं। फिर देखिएगा कि कैसे हमारी भक्ति हमारे जीवन को ऊंचा नहीं उठा पाती है। अनंत भगवान की भक्ति हम विशेष रूप से करते हैं, जरा देखें कि अनंत भगवान के गुण क्या है। तब एक श्लोक में आज आचार्य वादीराज महाराज स्वयं अनंत भगवान के गुणों को, जैसे हमें उनके गुणों को देखना चाहिए और जैसा उनके गुणों से अनुराग रखना चाहिए, वो कह रहे हैं, चित्ते कुर्वन निर्वधि सुख ज्ञान दृढ़ वीर रूपम देवत्वाम यह समय नीमा दादरिणी स्थिति श्रेयो मार्ग सकुरु सुकृति तावता पूर्वित्वा कल्याणा नाम भवति विषया पंचदा पंचिता। हे भगवान, मैंने तो आपकी भक्ति से इतना ही समझ पाया है कि जो व्यक्ति आपके अनंत चतुष्टय रूपी गुणों का निरंतर स्मरण करता है और समय नीमाद आदरणीय स्थिति, एक निश्चित समय पर, अर्थात जो 3 संध्या काल हैं भक्ति के, सुबह दोपहर शाम, जिनको हम सामायिक का काल भी कहते हैं, उन भक्ति के संध्या कालों में और जो नियम से आपकी भक्ति करता है उसका मोक्ष मार्ग बहुत आसान होता है और वो अपने मोक्ष मार्ग पर चलकर पूरा चल करके और क्या प्राप्त करता है, पंचदा पंचिता नाम 5 कल्याणक किसके होते हैं, तीर्थंकर के, उस 5 कल्याणक से युक्त तीर्थंकर पद को भी प्राप्त कर लेता है। 16 कारण भावनाओं में एक अनंत भक्ति भी तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण है और शायद वही वादीराज महाराज के ध्यान में बात आ रही है। अपन को भी भक्ति करते समय ये ध्यान में आ जाए कि मैं अनंत भगवान की भक्ति कर रहा हूं, अनंत भगवान की भक्ति तो मुझे तीर्थंकर पद को दिलाने में सहायक है, फिर मैं छोटी मोटी विपत्तियों को दूर करने के लिए इस भक्ति को करूं, ये तो ठीक नहीं है। मैं तो कर्मों की निजरा करने और उस परम पद को पाने के लिए भक्ति करूं, तो शायद मेरी ये भक्ति ज्यादा मुझे फल देगी। थोड़ा मोड़ा फल लेकर के और क्यों वापस लौटूं, मैं तो पूरा ही पूरा फल लेके जाऊंगा। भगवान से कुछ मांगू क्यों, मैं तो भगवान को ही मांग लेता हूं, छोटी मोटी चीज भगवान से क्या मांगनी। वंदे तदगुण लगते हैं, मैं तो आपके जैसे ही गुणों को पाने के लिए आपकी पूजा और अर्चना कर रहा हूं। और इतना ही नहीं, यहां तक कहते हैं कि जिनगुण संपत्ति हो मच्छम, अगर मुझे कोई चीज प्राप्त हो तो आपके जैसे गुणों की संपदा मुझे प्राप्त हो, और मुझे कोई भी चीज नहीं चाहिए। अगर इस तरह की भावना रख करके और हम भक्ति करते हैं और उनके गुणों से शिक्षा लेते हैं, देखें अनंत भगवान के कौन से गुण हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर, ये चार अनंत अवस्था में प्राप्त होने वाले विशिष्ट गुण हैं। और इनमें से हम देखें कि अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन किस बात का प्रतीक है, वे सब जानते हैं, उनसे कुछ भी नहीं छिपा है, वे संसार के राई रत्ती घटित होने वाली हर चीज को अपने ज्ञान के द्वारा जान लेते हैं, ये उनका सर्वव्यापीपना है। वे सबके भीतर समाये हुए हैं, या ये कहें कि उनके भीतर सब कुछ समा गया है। उनके ज्ञान में तो सब समाया हुआ है, उनके ज्ञान में तो सब दिखाई पड़ रहा है, और वे सबके हृदय में भी समाये हुए हैं और सब उनके हृदय में है। अगर ऐसा अर्थ ले ले, यह भी सर्वव्यापी होने का ही अर्थ है। ऐसा भगवान का गुण है, और मैं क्या इस सर्वव्यापी पने को अपने जीवन में ला पा रहा हूं, इस बात पर विचार करना पड़ेगा। और दूसरी चीज, वे सब कुछ जानते हैं, उनके पास हर प्रश्न का समाधान है। क्या मेरे जीवन में उठने वाली समस्याओं का समाधान पाने की मैं ऐसे ही भक्ति से कोई कोशिश करता हूं? इन दो छोटी सी बातों पर अपन विचार कर लेंगे। आचार्य महाराज के जीवन की एक घटना आपको सुनाऊं, कैसे हमें सब चीजों के समाधान मिल जाते हैं अगर हमारे मन में अनंत भगवान के प्रति या कि पंच परमेश्वरी के प्रति भक्ति होती है, तो भक्ति हमें कैसे समाधान देती, हमारे मन में उठने वाले कितने मिथ्या विकल्पों को वो आसानी से शांत कर देती है। इतना ही नहीं, ज्ञानात्मक विकल्प, राग द्वेषात्मक विकल्प जो उठते हैं उनको तो भक्ति शांत करती ही करती है, लेकिन हमारे भीतर उठने वाले ज्ञानात्मक विकल्प, ये चीज कैसी है, ये चीज कैसी है, बिना किसी अध्ययन और मनन के, और हम अकेले चरणों के सानिध्य से भी अपने बहुत सारे ज्ञानात्मक विकल्पों को समाधान प्राप्त कर सकते हैं, उन प्रश्नों का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। मैंने शायद पता नहीं पहले सुनाया कि नहीं, भूल जाता हूं, आप बता दिया करें कि आपने सुना दिया तो फिर मैं बदल दिया करूंगा, लेकिन आप कहते कि नहीं कोई बात नहीं, फिर से सुनाओ, डबल भी हो जाए कोई बात नहीं। आचार्य के जीवन का वो, सबके जीवन में शायद ऐसा हुआ होगा, आप ख्याल करके देखना कि हाँ कभी कभी ऐसा हुआ, हमारे साथ भी हुआ। सन 1980 की बात है, मैं तो उस समय शुरुआत ही की थी मैंने आचार्य के चरणों में आकर के, और अध्ययन और मोक्ष मार्ग पर चलना ही शुरू किया था, तो बहुत थोड़े से ग्रंथ पढ़े थे जितना आचार्य श्री ने पढ़ाया था, एक दो ग्रंथ ही पढ़ पाए थे। मुक्तागिरी की बात है 1980 में, तो वहाँ पर आचार्य श्री जब अध्ययन करा रहे थे तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे थे जो कि नहीं सुलझ पाते थे, जिनका समाधान नहीं हो पाता, तो मैं लिखता जाता था कि कभी जब आचार्य श्री को वक्त होगा तो अलग से डिस्कशन कर लेंगे आचार्य श्री के चरणों में जाकर। एक दिन देखा तो आचार्य श्री शांत बैठे हुए हैं, अपना कुछ लिख पढ़ रहे हैं, तो हमने अपने प्रश्न निकाले और जाकर के उनके चरणों में जाके बैठ गया। और एक मैनर होता है कि कोई अपना काम कर रहा है तो हम उसे मजबूर ना करें कि वो हमारी तरफ मुकातिफ हो, वो हमारी तरफ देखे, तो मैंने नमोस्तु भी इस तरह से किया कि उनको डिस्टर्ब ना हो, और मैं दूर बैठ गया जाकर के कि अभी महाराज जब अपने काम से निश्चिंत होंगे तब देख लूंगा, वो मेरी तरफ अपने आप देखेंगे, जब देखेंगे तो मैं पूछ लूंगा। तो वो अपने लेखन में लगे थे, उतने में मैंने सोचा कि एक बार अपने प्रश्नों को फिर से देख लूं, इसमें से पहले कौन सा पूछूं, बात को कौन सा पूछूं, उतना वक्त ही है भी कि नहीं, तो बहुत जरूरी है उनको पूछ लूं, 10-2500 प्रश्न है, अब उन सारे प्रश्नों का जवाब एकदम तो नहीं मिलेगा। ऐसा सोच करके मैं पढ़ रहा हूं प्रश्न, और एक एक प्रश्न पढ़ता जाता हूँ और मुझे लगता कि इसका उत्तर तो वो आचार्य ने उसमें बताया था, वो प्रवचन सार जी के इस वाले प्रश्न पर यही तो गाथा है, उसका तो उत्तर इसमें, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और ऐसे करके, और जितने 25 प्रश्न लिखे थे उन सबके उत्तर मुझे मालूम। अरे फिर आचार्य को कहे तो अपन बेकार में परेशान करें, प्रणाम करके और मैं वापिस लौटने लगा। तो उन्होंने देख तो लिया था पर अपने काम में लगे थे इसलिए नहीं बोले थे कि शायद ये बैठेगा थोड़ा 10-15 मिनट। पर मैं जैसे ही उठ के जाने को हुआ तो बोले ठहरो 2 मिनट, अभी बात करता हूँ, मैं ये काम कर लूँ। तो मैंने आचार्य जी को कहा कि महाराज मैं तो कुछ प्रश्न लेकर के आया था लेकिन आपके चरणों में बैठा हूँ जो 10 मिनट से, और मैं देख रहा हूँ कि मेरे अब प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं चाहिए, वो तो मुझे मिल गया है। बस इतना इतना कहा आचार्य जी चुपचाप मुस्कुरा के फिर से अपने काम में लग गए और मैं वापस लौट गया। मुझे खुद आश्चर्य होता है, आज भी आश्चर्य होता है, जब भी मेरे मन में कोई प्रश्न उठता है और मैं आचार्य जी को स्मरण करता हूँ तो मुझे लगता है कि जैसे वो उस प्रश्न का उत्तर बता रहे हों। और इतना ही नहीं, मुझे सूझता है कि यहाँ इस जगह इस प्रश्न का उत्तर आसानी से मिल जाएगा। ये क्या चीज़ है? ये हमारी श्रद्धा और ये हमारी भक्ति, क्या ऐसी श्रद्धा और भक्ति हमारे भीतर है जो हमारे मन को इतना निर्मल कर दे कि हमारे ज्ञान का शौभसम बढ़ जाए? इतना ही तो है, उन्होंने अनंत ज्ञान दर्शन पा लिया है, वे इतने निर्मल हो गए हैं कि अगर हम उनकी भक्ति करते हैं, उनके चरणों में बैठते हैं तो उनकी निर्मलता हमें प्रभावित करती और हमारे ज्ञान के शौभसम को बिना किसी प्रयत्न के और अधिक बढ़ा देती है। हम जितना ज्ञान का शयोपसम अपने पुरुषार्थ से नहीं कर पाते हैं उतना ज्ञान का शयोपसम अकेले भगवान के चरणों में बैठकर उनके प्रति अपनी श्रद्धा भक्ति करके अपने मन को निर्मल कर लेने से भी ज्ञान का शयोपसम हो जाता है। और आचार्य श्री इसीलिए बार बार कहा करते हैं कि जिसको जीवन के समाधान पाना है, जिसको कुछ प्रश्नों की रटे रटाए उत्तर पाना है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जिनके पास बहुत सी क्वेरीज हैं, बहुत से क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर खोजते रहते हैं वे, लेकिन जिनको अपने जीवन का समाधान ढूंढना है, जिनको अपने जीवन के प्रश्न का उत्तर हल करना, वो उत्तर पाना है, उसका हल करना है, तो उसके लिए तो इतना ही जरूरी है कि वो भगवान की भक्ति में ऐसा लीन हो जाए कि चित्त निर्मल हो, और चित्त की निर्मलता होते ही ज्ञान का शयोपसम इतना अधिक बढ़ जाता है कि सारी चीजें अपने आप समाधान को प्राप्त हो। ये भक्ति से हम एक चीज और अपने पॉकेट में रखते जाएं, एक एक करके रोज रख रहे हैं अपन, कितने सारे दिन हो गए अपन भक्ति से कितनी सारी चीजें, छोटी छोटी सी चीजों पर विचार कर रहे हैं, बस एक आध दिन का काम और रह गया है। फिर भक्ति का वादीराज महाराज के अनुसार जो उन्होंने भक्ति का ढंग बताया, जो स्वरूप बताया, वो अपन लगभग अंतिम उस पर हैं। आज अपन ने 24वां पद पढ़ लिया है, एक पद और बाकी है, वो कल फिनिश कर लेंगे। पर एक चीज अपन ने आज सीखी कि हम जीवन में समाधान ढूंढने के लिए कितना भटकते हैं, कहाँ कहाँ किसके पास पहुँचते हैं अपने जीवन का समाधान पाने के लिए, अपने जीवन के प्रश्नों का उत्तर हल करने के लिए। लेकिन हमारे पास तो अपने हर प्रश्न का उत्तर हमारे भगवान के चरणों में बैठने से मिलने वाला है, लेकिन हम बैठते नहीं। दूसरी चीज, भगवान सर्वव्यापी हैं, सब उनके हृदय में झलकता है, वे सबके हृदय में हैं, कोई उन्हें स्वीकार करे या ना करे, कोई उन्हें माने या ना माने, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान को हम श्रद्धा से स्मरण करते हैं या भगवान को हम नहीं स्मरण करते हैं, दोनों स्थितियों में भगवान का तो कुछ बनता बिगड़ता नहीं, वे तो अपने आप में आत्मस्थ हैं। लेकिन उनको स्मरण करें हम तो हमारा ही जीवन पवित्र होता है, हमें उनके जैसे बनने की प्रेरणा मिलती है। कैसी कैसी प्रेरणा मिलती कि ऐसा ही तो हमारा जीवन होना चाहिए जिसमें कि हम सबके हृदय में स्थान पा सकें और सबको अपने हृदय में भी स्थान दे सकें। बहुत कैसा लगेगा, थोड़ा सा कठिन लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एक लाइन में इसका उत्तर है, आत्मवत् सर्वभूतेषु, जैसी मेरी आत्मा है वैसा ही सब जीवों के अंदर आत्मा है, और जैसा मैं सुख दुख का अनुभव करता हूं ऐसा ही सब सुख दुख का अनुभव करते हैं। तब अगर मैं अपने दुख में दूसरे की मदद चाहता हूं तब मुझे भी दूसरे के दुख में दूसरे की मदद करनी चाहिए। जैसे मैं अपने सुख में सबको शामिल करने में और अधिक सुखी होता हूं, ऐसे ही मुझे दूसरे के सुख में भी शामिल होकर के उसके सुख को बढ़ाना चाहिए। लेकिन मजा हम लोगों के साथ यह है कि दूसरे को जिसमें सुख मिलता है उसमें हमें दुख मालूम पड़ता है। नहीं, ईमानदारी से सोच करके देखना, मैं मेरे कहने से नहीं कि मैं तो ऐसे कह देता हूं, आप खुद अपने भीतर की, जब जब किसी और को हम सुख में देखते हैं तो कैसा जल भुन जाते हैं, कैसे ईर्षान्वित हो जाते हैं हम कि इतना सुख में बीत रहा है जीवन। ये बात जुदी है कि फिर हम थोड़ी मायाचारी करके जब उस पर दुख आता है तो जल्दी से दौड़ के जाते हैं, ऐसी सहानुभूति व्यक्त करते हैं जैसे हमसे ज्यादा हितैषी कोई नहीं है। अगर आप उसके हितैषी हैं तो उसके सुख में आपने कभी सुख माना? कभी नहीं मानते। दूसरे के सुख में हम कभी सुखी नहीं होते, सिर्फ फॉर्मेलिटी करने के लिए उसके दुख में शामिल होते हैं। और एक साइकोलॉजिस्ट ने तो ये लिखा है कि दूसरे के सुख में भी हर्षित होकर उससे मिलने पहुंचते हैं कि अब आएगा बेशक मजा। हाँ, अब जब तुम पे दुख आया है तब मैं आया हूं तुम्हें देखने कि कैसे दुखी हो, भीतर भीतर तुम्हारे दुख को देखकर कि मुझे आनंद आ रहा है। ऐसे भी हैं क्षण हमारे जीवन में, अज्ञानतावश ऐसा जीवन भी हमने बिताया है जब दूसरे के दुख में हमने आनंद माना है और दूसरे के सुख में हमने अपने जीवन को दुखी बनाया। भगवान की भक्ति हमें ये नहीं सिखाती, हमें तो ये सिखाती है कि जैसा सुख दुख हमारा है वैसा ही प्राणी मात्र का है। हमें इस बात का ध्यान रख करके कभी भी दूसरे के दुख में निमित्त नहीं बनना चाहिए, संभव हो सके तो दूसरे के सुख में निमित्त कोई बनाए तो बन जाना चाहिए। हम दूसरे को सुखी दुखी नहीं कर सकते भैया, हम दूसरे को सुखी बनाने के उपाय तो कर सकते हैं लेकिन उसके साथा का उदय होगा तब वो सुखी होगा। हम दूसरे को दुखी करने के उपाय तो कर सकते हैं, जब तक उसके असाता का उदय नहीं होगा आपके सारे उपाय बेकार चले जाएंगे, उसको दुखी नहीं कर सकते आप। लेकिन क्या करें, हम दूसरे के दुख में निमित्त बनने का प्रयास करके अपना घाटा करते हैं, और अगर हम दूसरे के सुख में निमित्त बनने के लिए प्रयत्न करें तो उससे हमारा ही लाभ होने वाला। इतनी छोटी सी बात भक्ति करते करते और हमारे मन में आ जानी चाहिए। अभी तो हम भक्तियों के पाठ ही दोहराते हैं, अब हम थोड़ा सा भक्ति के पाठ दोहराने के साथ साथ और यह विचार भी अपने जीवन में लाएं, सुबह शाम खाली बैठ करके इस तरह का विचार भी करें। एक घटना पढ़ता था मैं, बिल्कुल बच्चों की घटना है लेकिन है बड़ी अच्छी घटना, उससे बहुत प्रेरणा मिलती है। एक छोटा सा बच्चा था, स्कूल जाता था वो, तो स्कूल में जैसा जनरली होता है कि बच्चों का आपस में एक दूसरे से झगड़ा भी हो जाता है, तो एक बड़ा सा बच्चा था और एक थोड़ा छोटा बच्चा था, उन दोनों का आपस में झगड़ा हो गया। होना तो ये चाहिए कि बराबरी वाले से झगड़ा होना चाहिए लेकिन पता नहीं क्या हुआ, होगा कोई पुराना उनका, तो वो थोड़ा छोटा बच्चा था उसकी पिटाई कर रहा था वो बड़ा वाला बच्चा जो था, तो इसको थोड़ा देख करके अच्छा नहीं लगा। ये भी हालांकि उसी छोटे बच्चे के बराबर का था, पर उस बड़े बच्चे को, उस छोटे बच्चे को मारते देख करके इसके मन में आया कि क्या करूं, उसको बचा तो पाऊं नहीं क्योंकि मैं भी कमजोर हूं, ये तो बड़ा सारा है। तो उसके पास जाकर के पूछता है कि आप इसको कितना मारेंगे, मतलब तुम्हें इससे क्या मतलब? वो बड़ा वाला कहता है नहीं, मेरा मतलब ये है कि मैं इसको बचा तो नहीं सकता क्योंकि आप मेरे से ज्यादा ताकतवर हैं, मैं इसकी तरफ से लड़ूं तब भी मैं ही पिट जाऊंगा, तब इसलिए पूछ रहा हूं कि आप इसे बैट से मार रहे हैं तो कितने और बैट मारेंगे आप इसको? तो बड़ा वाला लड़का कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है, तुम ठीक ठीक बताते क्यों नहीं? तो मालूम वो क्या कहता है कि मैं तुमसे इसलिए पूछ रहा हूं कि तुम अगर इसे 10 बैट और मारना चाहते हो तो सुनो, इसको 5 ही मारो, 5 मुझे भी मार लो, मैं उतने तो सहन कर लूंगा, थोड़ा सा इसका दुख तो मैं कम कर सकता हूं, पूरी तरह से इसकी जगह पर मैं लड़ नहीं सकता तुमसे लेकिन मैं इसका दुख तो कम कर सकता हूं। क्या ऐसा सोच अपने भीतर आता है? मैं ये पढ़कर के दंग रह गया कि ऐसा सोच तो अपने भीतर आते ही नहीं। मैं पूरी तरह से किसी के दुख को दूर नहीं कर सकता तो क्या उसके दुख को दूर करने में मैं अपना कोई हिस्सेदारी कर सकता हूं क्या? थोड़ा सा मेरा भी हिस्सा उसमें हो सकता है क्या? अगर ऐसे भावों में हमारे निर्मलता आ जाओ, ये भावों की निर्मलता है, अकेले और जो अपन चीजें करते हैं उनसे ही भक्ति पूरी नहीं होती। इस तरह के जब हमारे अंदर भाव उठना शुरू होती है, तो हमने आपको सुनाया इसलिए शायद आपके मन में थोड़ा सा भाव आ जाएगा, या कि मैं सोचता हूं कि शायद हम लोगों के अंदर ऐसे सब अच्छे अच्छे भाव पड़े तो रहते हैं लेकिन सर्कमस्टेंसेस वैसे नहीं है, वैसा वातावरण भी नहीं मिलता, ना वैसा कोई हमें बताने वाला मिलता है कि हमें ऐसा भी कर लेना चाहिए, तो शायद हम कई बार अपनी अज्ञानता की वजह से भी चूक जाते हैं। पर हम अगर भक्ति करते समय ये चीजें भी सीख करके अपने घर लौटें और रास्ते में इन सब चीज़ों को भी हम अपने जीवन में फॉलो करें तो ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं है कि हम अपने जीवन को अच्छा ना बना पाएं, ये छोटी छोटी चीज़ें भी जो भक्ति से हम सीखते हैं। आज अपन ने दो चीज़ें सीख ली कि हम भक्ति के द्वारा अपने जीवन की समस्याओं को आसानी से समाधान कर सकते हैं। हम कहाँ कहाँ माथा टेकने चले जाते हैं, कहाँ कहाँ अपनी विपत्ति में किस किस का सारे समाधान अपने आप मिल जाएंगे। और दूसरी चीज़, भगवान अनंत सुख में लीन है, अनंत सामर्थ्य है उनके अंदर और वे सर्वव्यापी हैं। वे मुझे निरंतर कहते हैं कि ऐसे ही सर्वव्यापी बनो, सबको अपने जैसा मानो और सबके सुख दुख में अगर हो सके तो सुख में शामिल होकर सुख बढ़ाओ और दुख में शामिल होकर उसके दुख को घटाओ। विनोबा हमेशा कहा करते थे कि गणित का हिसाब है कि सुख बांटो तो आधा रह जाता, दुख बांटो सुख बांटो तो दूना हो जाता, दुख बांटो तो आधा रह जाता है। अगर हम अपना दुख दूसरे से कह दें तो अपना दुख आधा रह जाता है, और अगर अपना सुख दूसरे से कहें और दूसरा भी उसमें शामिल हो जाए तो हमारा सुख दूना हो जाता। संसार में इतना व्यवहार तो आना ही चाहिए, हमारे अपने जीवन में इतनी व्यवहारिकता तो हमें सीखनी ही चाहिए भक्ति के द्वारा। ये हम जीवन में भक्ति से इन छोटी छोटी बातों को सीखकर अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने वाला है। जब जब ऋषियों में रच बच कविता दिल निद्रा में हो अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक होता हो। शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो, करते तब शैल नदी तट पर तरुतल वर्षा की झड़ियों में समतारस पान किया करते सुख दुख दोनों की बंधन तर तर टूट पड़े खिल जावे अंतर की कलियां।
अनुभव ताल देखो जीवन के जताल देखो का ज्ञानी के ज्ञान पे सूझे लो कालो सुमानी मस्तक नमो सदा दे
आचार्य परिवार संतों में एक स्वार्थी विद्यासागर महाराज के परम शिष्य परम पूज्य एक स्वार्थी समासागर महाराज परम पूज्य एक स्वार्थी भव्य सागर महाराज की जन्म नेहरू नाम